हेलो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
और प्यारे भाई और बहनों,
टुडे वी आर हैविंग समथिंग लिटिल डिफरेंट।
और आज हमारे बीच में थोड़ा हम अलग कुछ करेंगे।
सिंस वी थॉट दैट वी आर हैविंग द मीटिंग एवरी डे, टुडे वी विल फोकस ऑन फैमिली।
और आज जैसे हम लोग रोज हम लोग इस प्रकार मिलते हैं सभा के अंदर, हमने सोचा कि आज हम खासकर परिवार के ऊपर ज्यादा जोर देंगे।
बिकॉज वर्ड ऑफ गॉड इन द न्यू टेस्टमेंट प्लेसेस लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन फैमिली लाइफ।
और नए नियम के अंदर, परमेश्वर के वचन के अंदर, परिवार, पारिवारिक जो जीवन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है।
एंड ए गुड चर्च कैन ओनली बी बेस्ड ऑन गुड फैमिलीज।
और एक अच्छी कलीसिया जो है वो अच्छे परिवारों के द्वारा ही हो सकती है।
एंड गुड फैमिलीज कैन ओनली बी बिल्ट बाय गुड पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड।
और ये अच्छा परिवार कब बन सकता है कि जब हमारा व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा हो।
सो इन ऑर्डर टू स्टार्ट ए गुड फैमिली बिफोर दैट आई शुड हैव ए पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड।
और यहां से एक अच्छा परिवार निर्माण करने से पहले मेरा व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा होना जरूरी है।
वेयर माई रिलेशनशिप विद गॉड इज स्वीट
और जहां मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता जो है बहुत ही अच्छा है,
एंड फ्रॉम देयर व्हेन टू पीपल कम टुगेदर
और वहां से जब दो लोग एक साथ मिलते हैं
एंड दे कैन म्यूचुअली हैव ए गुड रिलेशनशिप व्हेन दे बोथ आर कनेक्टेड बिकॉज ऑफ क्राइस्ट।
और दो व्यक्ति एक परिवार में जब परमेश्वर से जुड़े हुए रहते हैं तब वो एक दूसरे के साथ भी बहुत अच्छा संबंध रख सकते हैं।
एंड ऑल्सो द मेन पर्पस ऑफ हैविंग ए गुड फैमिली इज नॉट जस्ट फॉर द हस्बैंड एंड वाइफ टू लिव पीसफुली।
और एक अच्छा परिवार होना मतलब इतना ही नहीं कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ शांति के साथ रहे, उतना ही नहीं,
इट इज ऑल्सो टू फुलफिल गॉड्स पर्पस एज ए फैमिली।
लेकिन उसके साथ परमेश्वर का जो उद्देश्य है परिवार के रूप में उसे पूरा करना भी है।
सो कीपिंग दिस थॉट्स इन माइंड आई हैव कीपिंग दिस फाउंडेशंस इन माइंड we are going to discuss few questions related to family life.
और परिवार को मद्देनजर रखते हुए उसके नींव की जो बातें हैं, कुछ प्रश्नों को आज हम देखेंगे परिवार के बारे में।
So I will be asking a few questions.
और कुछ प्रश्नों को मैं पूछूंगा
And brother Abu will be answering those questions.
और उन प्रश्नों के जवाब भाई अबू जो है वो बताएंगे।
So I will start and Kiran will translate in Hindi the question. And Abu brother will give the answer and Kiran will translate the answer as well.
और हम लोग डनी भैया जो है उसको प्रश्नों को पूछेंगे और उसके उत्तर अबू अंकल देंगे और उसको ट्रांसलेट हिंदी में अनुवाद किया जाएगा।
The first question is sometimes after marriage we wonder whether the person I have chosen is God's will and
और
we
कई
can
बार,
perhaps I could have found a better wife or husband. What should
और
I
कई
do
बार
in the
हमें ये
future?
आश्चर्य होता है या ताजुब होता है कि जिस व्यक्ति से मेरा विवाह हुआ या शादी हुई क्या वो परमेश्वर की इच्छा में है या नहीं है, और शायद मुझे एक बेहतर पति या पत्नी जो है मिल सकती थी, तब मुझे क्या करना चाहिए।
First of all, I want to say that I am not an expert in family matters.
और मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि पारिवारिक बातों में मैं कोई माहिर या एक्सपर्ट नहीं हूं।
Probably I have made more mistakes than any of you in my own family life.
और शायद हो सकता है कि आप में से किसी से भी बढ़कर मेरे पारिवारिक जीवन के अंदर मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं।
I was a very slow learner,
और मैं बहुत ही धीरे धीरे सीखने वाला व्यक्ति था।
but God and my wife was very patient with me.
और परमेश्वर और मेरी पत्नी जो है बड़े धीरज से मुझे सहते थे।
Over the period of time, over a period of many years, I learned many good things I should have learned much earlier.
और बहुत सालों के बाद मैंने बहुत कुछ अच्छी बातों को सीखा, शायद उन बातों को मुझे पहले ही सीख लेना चाहिए था।
I learned many things about family life from Brother Zach.
और मैंने बहुत सारी पारिवारिक परिवार के बारे में जो बातें हैं वो तो भाई जैक से सीखी है।
And many of them is not in a theory, theoretical knowledge became practical and so living and true in my own life.
और बहुत सारी इनमें से जो चीजें जो है वो किताबी बात या थियरी में नहीं है लेकिन मेरे व्यक्तिगत जीवन के अंदर ये व्यवहारिक बातों के अंदर बहुत ही सच साबित हुई है.
So some more things which I am sharing may be what I learned from Brother Sack, how he explained God's word about family life.
और कुछ जो बातें जो मैं आपके साथ बांटूंगा उनमें से बहुत सारी चीजें शायद हो सकता है भाई जैक की जो शिक्षाएं जो है परिवार के बारे में उसमें से वो हो सकती है.
But as I mentioned, I will not be saying that from a just a theoretical perspective, but to the extent it has helped me and made my own experience in my own family life.
और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं किसी किताबी ज्ञान के द्वारा नहीं या फिर एक थियरी के रूप में नहीं लेकिन मेरे व्यक्तिगत जीवन में जो मैंने सीखा है और मेरे जीवन में मैंने लागू किया उस आधार पे मैं इन बातों को मैं आपके सामने रखूंगा.
So coming to the question,
और प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे.
About someone doubting the marriage which has already happened, whether it was God's will or whether it was I missed God's will or probably I should have married a better husband or wife.
और ये प्रश्न इस प्रकार था कि कई बार हम संदेह करते हैं कि जिस व्यक्ति से मेरा विवाह हुआ है क्या वो परमेश्वर की इच्छा में है या नहीं है या शायद मुझे इससे बेहतर पति या पत्नी मिल सकती थी. ये प्रश्न है इस हालत में मुझे क्या करना चाहिए.
Once we are married, we should not be looking backward.
और एक बार जब हमारा विवाह हो जाता है तब हमें पीछे नहीं देखना चाहिए.
Just like Jesus told about a disciple, once he has started flowing, he should not be looking backward.
और यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि जब एक जो शिष्य जो है खल पर हाथ रख देता है तो उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए.
So after marriage, we should be looking forward.
और शादी के बाद हमें आगे की ओर ही देखना चाहिए.
Very often we may Satan. Will torment us with many feelings.
और हो सकता है कई बार शैतान जो है बहुत सारी ऐसी भावनाओं के साथ हमको सताने की कोशिश करेगा.
So David's purpose in putting such thoughts in our mind will be to steal the blessing which God has kept in our family life.
और शैतान का उद्देश्य इन संदेह को लाने के द्वारा क्या होता है कि वो हमारे पारिवारिक जीवन में परमेश्वर ने जो आशीष रखी है उसको वो चुराना चाहता है.
So we should never yield to such feelings.
और हमें कभी भी ऐसी जो भावनाएं जो होती फीलिंग्स जो होती है उसके अधीनता में अपने आप को समर्पण नहीं करना है.
We should not yield to the suggestions which devil trying to put in our mind. Probably I should have married a better husband or wife.
और शैतान के शायद ऐसे सुझाव होंगे वैसे सुझावों को हमारे मन में नहीं आने देना है कि मैं शायद एक बेहतर पति या पत्नी को मेरे जीवन में प्राप्त कर सकता था.
Bible also says that my just shall live by faith.
और वचन इस प्रकार भी कहते हैं कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा.
So in our family life or in our married life also we should seek to live by faith.
और हमारे विवाहित जीवन में और हमारे पारिवारिक जीवन के अंदर भी हमें विश्वास के द्वारा जीवन जीना चाहिए.
And not by our feelings.
और हमारी भावनाओं के आधार पर हमें जीवन नहीं जीना है.
And we should be wise in not allowing such satanic tricks in our life.
और हमें बहुत ही बुद्धिमान बनना है कि शैतान की ऐसी चालों को हम अपने जीवन में आने न दें.
Having married, we should try to use our energy to make our marriage successful and fulfilling.
और शादी के बाद हमारे सारे प्रयत्नों को हमको करना चाहिए ताकि हमारे विवाह को हम बहुत ही संतुष्ट कारक बना सके.
If you waste thinking and meditating in a negative way, that will take away all our energy.
यदि हम नकारात्मक बातों को सोचने में हमारा ध्यान ज्यादा लेके लेंगे तो वो हमारे ध्यान को और ज्यादा उसकी तरफ लेकर जाएगा.
So we should reserve that energy to make our life, married life, more meaningful and fruitful.
और उस ऊर्जा को हमें संग्रह करके रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए ताकि हमारे विवाह को और भी हम फलवंत कर सके और भी उसको अर्थ के साथ हम जी सके.
However, as a worst case, assume we have made a mistake.
और अगर हो सकता है कि अगर शायद हमने कोई गलती कर दी हो.
Suppose we missed God's plan for our marriage.
और हो सकता है कि हमारी शादी के लिए परमेश्वर की योजना को हमने खो दिया.
In our self will, we without asking God's guidance, we went ahead and married someone whom we liked without asking God's guidance.
और परमेश्वर की गाइडेंस को पूछे बिना हमने अपनी खुद की इच्छा के अंदर हमें जो पसंद आया शायद उस वहां जाकर हमने विवाह कर लिया.
Even if that is a truth, what we should do?
सत्य है.
What we should do?
हमको ऐसी हालत में क्या करना चाहिए?
Is that the end of the world?
और क्या संसार का यहाँ पर अंत हो जाता है?
Is it a hopeless situation?
और क्या ये बिना आशा की आशाहीन परिस्थिति है?
I would say that like any other sin or disobedience we would have committed, repent about that.
और किसी भी पाप को या अनाज्ञाकारिता को जब हम करते हैं उसी प्रकार इस बात के लिए भी हमको मन फिराना है.
And confess to Jesus, Lord, I admit I made a mistake. I did not consult you. Forgive me.
और हमें परमेश्वर के सामने मान लेने कबूल करना है कि प्रभु मैंने तुझे नहीं पूछा और तू मुझे माफ कर इस बात के लिए.
So in that situation, what is the promise?
और इन बात के अंदर ऐसी अगर बात है तो उसका वायदा क्या है?
Even if it was a wrong decision, Jesus is merciful to forgive us now.
और यहाँ तक कि वो गलत निर्णय था लेकिन आज परमेश्वर दयावंत है हमको माफ करने के लिए.
And he will also justify us if we are really sincere.
और यदि हम बहुत ही गंभीर हैं तो वो हमें उसमें धर्मी भी ठहराएगा.
Justification means it is as we have not done that wrong.
और धर्मी ठहराना मतलब इसका क्या है कि जैसे हमने वो गलती कभी पहले की नहीं है.
So having received such a good conscience before God, we can seek God's wisdom to build our family further.
और परमेश्वर से एक अच्छा विवेक प्राप्त करने के बाद हम परमेश्वर के साथ उसके साथ परमेश्वर की बुद्धि और समझदारी को खोजे ताकि हम एक अच्छे परिवार का निर्माण कर सके.
God can definitely give us his grace and wisdom far beyond we imagine.
और हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं करते उससे बढ़कर परमेश्वर उसका अनुग्रह और उसकी बुद्धि हमको दे सकता है.
We know the example of the first miracle Jesus performed in Canaan.
और आप जानते हैं यीशु मसीह ने पहला चमत्कार जब काना के विवाह के अंदर शादी के अंदर किया.
काना, सॉरी,
काना के विवाह के अंदर.
I thank God for my wife who is sitting beside me to help.
और धन्यवाद मेरी पत्नी के लिए जो मेरे बाजू में बैठी हुई है.
So first of the miracle Jesus performed was to help a family.
और सबसे पहला चमत्कार जो यीशु मसीह ने किया वो था एक परिवार की मदद करने का.
A situation where there was a tremendous need.
और ऐसी एक परिस्थिति थी जहां बहुत ही अत्यंत एक जरूरत वहां थी.
Yes, helpless situation.
और वहां पे कोई भी मदद वहां नहीं थी, वो लोग असहाय थे.
In that time of need, Jesus converted just plain water into best wine.
और ऐसे जरूरत के स्थान पर यीशु मसीह ने एक सादा पानी जो है उसको दाखरस में बदल दिया.
So whichever situation we are in now,
और कोई भी हालत में अभी हम क्यों ना हो वर्तमान में,
after having married maybe some years before,
और शायद कुछ सालों पहले शायद हमारा विवाह हुआ होगा,
God's hands are not shortened that he cannot help us.
और परमेश्वर के हाथ इतने छोटे नहीं हो गए कि वो हमारी सहायता न कर सके.
He is a merciful, loving father who is very much keen to help us, especially in our family.
और वो बहुत ही दयावंत और प्रेम से भरा हुआ पिता है और खासकर हमारी परिवार की बातों के अंदर हमारी मदद करने के लिए बहुत ही उत्सुक और इच्छुक वो है.
So we should stop looking backwards, we should look ahead. That is a gospel.
और सुसमाचार ये है कि हमें पीछे देखना बंद करना है और आगे की ओर अब आगे देखना है.
I knew one, just to give an example, one family.
उदाहरण के रूप में मैं एक परिवार के बारे में जानता हूँ.
They were married for about 20 years.
और मैं उनको जानता हूँ, 20 साल से उनकी शादी हुई थी.
And they had two adult children, late teenage children.
और उनको जो है बड़े दो बच्चे भी थे उनको.
So all their life they spent in fighting with each other and the difference in opinion and doubting whether I should have married a better person.
और पूरे ये 20 साल के दौरान ये पति पत्नी हमेशा झगड़ते हुए एक दूसरे के ऊपर संदेह करते हुए कि मुझे शायद मैंने विवाह इस व्यक्ति से क्योंकि ऐसी सारी बातों के अंदर उन्होंने बताया.
But then they were reconciled to at that particular time they were saved. They reconciled their life before God.
और उस समय उन 20 साल के बाद जब उन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया और वो मेल मिलाप किया,
they reconciled to one another also.
और एक दूसरे के साथ भी उन्होंने मेल मिलाप किया.
They started their life afresh.
और फिर उन्होंने अपने जीवन को और एक ताजगी और नई नई शुरुआत उन्होंने जीवन की.
So I remember that brother and sister was telling this. It is like we married just yesterday.
मैं अभी भी याद करता हूँ जैसे कि उन भाई और उस भाई और बहनों की बात, वो कहते थे कि शायद हमने कल ही शादी की, ऐसा हमको लग रहा है.
Means after 20 years, they refreshed their marriage by God's grace and restarted their life and they felt they are just newly married.
और 20 साल के बाद ये दंपति जो है वो कह रहा है कि जैसे कि हमने एक नई शुरुआत, कल ही हमारी शादी हुई थी, परमेश्वर के अनुग्रह से उन्होंने एक नई शुरुआत वहां पर की.
Okay, the second question is, should husband share in the household responsibilities or it should be only the wife who should be doing the household responsibilities?
और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या पति को घर के कामों के अंदर जो घरेलू काम होते हैं उसमें पत्नी को साथ देना चाहिए, मदद करनी चाहिए या फिर पत्नी को ही करना चाहिए?
This is a very interesting question.
बहुत ही दिलचस्प ये प्रश्न है.
I'm sure all the sisters are eager to hear the answer.
और मैं बहुत आशा करता हूँ कि बहनें जो जितनी भी सुन रही हैं बहुत ही आतुर होंगे, उत्सुक होंगे इसका प्रश्न का जवाब सुनने के लिए.
My wife is also smiling here.
और मेरी पत्नी भी यहाँ मुस्कुरा रही है.
She already told me I'm not missing today's meeting. I want to listen to what answers you are giving.
उन्होंने कहा कि मैं आज की मीटिंग को मैं मिस नहीं करूंगी. मैं देखना चाहती हूँ आप क्या उत्तर देते हो.
Bible uses the words partners.
और बाइबल के अंदर शब्द लिखा गया है सहयोगी, जो पार्टनर होता है.
And helper.
और मदद, सहाय करने वाला.
So these are the words used in the scripture.
ये सारे शब्द जो है वचन के अंदर लिखे गए हैं.
About husband-wife relationship and in a family setting.
और पति-पत्नी के संबंध में या परिवार के एक संबंध में.
Partner. And helper.
और वहां पे लिखा है कि एक मददगार, एक सहायक करने वाले.
That means any work can be shared.
इसका मतलब यह है कि कोई भी काम जो है उसको बांटा जा सकता है.
No part of household work can be said this is wife's work exclusively or this is husband's work exclusively.
और घर का ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए कि उसके लिए हम ये कहे कि ये पति का काम है सब सारा और ये सारा काम जो पत्नी का, ऐसा नहीं होना चाहिए.
I want to share some practical thoughts.
व्यवहारिक कुछ विचार मैं बांटना चाहता हूँ आप लोगों के साथ.
If a husband is working and wife is at home.
और यदि पति जो है वो काम पर जाता है और पत्नी जो है वो घर पर रहती है.
The wife should naturally try to finish as much as work during the day when she is alone at home before the arrival of husband.
और पत्नी जब पूरे दिन घर पे रहती है तो शाम को पति घर आए उसके पहले जितना हो सके उतने घरेलू कामकाज वो पूरा करके रख सकती है.
Why I am saying this?
और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ?
If most of the household work is over. As the husband is out on his own work, the advantage when he is back, you have quality time together.
और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पति जब घर से बाहर दिन में है और आप घर के कामकाज सारे निपटा लेंगे पूरे दिन भर में, जब वो वापस पति लौटते हैं, तो एक बहुत एक अच्छा quality time आप एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं.
That once the husband is back from work, that time can be best used in fellowship and sharing and some leisure together.
और जब पति काम से जब वापस आता है तब पत्नी के साथ वो एक अच्छा संगति का समय, एक आनंद का समय दूसरे के साथ वो बिता सकते हैं.
But in families, especially in those families where there are children and maybe more than one children,
और ऐसे परिवारों के अंदर जहां बच्चे हैं, यहां वहां एक से भी ज्यादा बच्चे जहां होते हैं,
it will be very difficult for a wife alone to finish all the household work during the day.
और वहां पर दिन के दौरान एक पत्नी को बहुत ही तकलीफ या बहुत ही कठिन होगा कि सारे कामों को वो पूरा कर सके बच्चों की देखभाल करते हुए.
Husband should particularly understand that situation.
और पति को खास करके इस परिस्थिति को समझना चाहिए.
And should be eager to come home and help in the household works.
और पति को घर आकर पत्नी को घरेलू कामकाज जो होते हैं काम उसके अंदर सहायता करनी चाहिए.
Things a husband can do is probably cooking, cleaning, helping children, studies, etc.
और बहुत सारे ऐसे काम है, खाना बनाना है, बच्चों की पढ़ाई के अंदर सफाई करना, सारे कामों के अंदर पति मदद कर सकते हैं.
And whatever things the husband need not be good cooks, but they can definitely do things like cleaning the toilet, etc.
और शायद हो सकता है कि पति अच्छे खाना बना नहीं पाते होंगे, लेकिन शायद शौचालय या टॉयलेट साफ अच्छे से कर पाते होंगे.
So in that way, it will relieve the overworked wife.
ताकि जो बोझ है काम का जो पत्नी के ऊपर है उसके अंदर वो उनकी सहायता कर सकते हैं.
So husband should see it as an opportunity, as a partner.
और पति को जो है एक मौके के रूप में देखना है कि वो उसका पार्टनर है या सहयोगी है और काम में काम को बांटना है.
And with eagerly we can help.
और बहुत ही इच्छा के साथ आतुरता से मदद करनी चाहिए.
One factor which we should remember is,
और एक बात को हमें याद रखना चाहिए वो ये है,
when brothers go out for work, we interact with other people.
और जब भाई जो काम पर जाते हैं तो बहनें जो है वो हम भाई जो है वो बहुत सारे लोगों से बात करते हैं.
As we are involved in many kind of work, interact with many people, it is not a very boring thing to be at office or workplace.
और जब भाई लोग खास करके काम पर जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनके लिए बोरिंग नहीं होता क्योंकि बहुत लोगों से वो मिलते हैं, काम में व्यस्त रहते हैं.
But at the same time, probably the wife is all alone at home or alone with the child, within the four walls of the house.
और उसके साथ साथ ये भी हमें याद रखना है कि पत्नी जो घर पे बच्चों के साथ अकेली चार दीवारों के अंदर है शायद.
So husband should understand that situation also and be more than willing to come home and give company and use do many things together.
और ये पत्नी को समझना चाहिए और घर पर आकर उसको इस बात को समझकर बहुत ऐसी चीजें हैं जो साथ में करना चाहिए और पत्नी का सहयोग देना चाहिए.
I don't know whether it's a perfect answer.
So the other question is, sometimes the husband and wife, they argue over very silly things and that destroys the peace at home. So how can we avoid that situation and how can we have a joyful and a peaceful home?
और यहाँ पर तीसरा प्रश्न ये है कि हम कभी कभी जो है मूर्खतापूर्ण मामलों पर बहस करते, छोटी छोटी बातों पर बहस करते और यहाँ तक कि उसके कारण घर की शांति भी छिन जाती है, और हम कैसे घर को आनंदमय और शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण कैसे उसको बना सकते हैं?
We all probably started our family life in such a stupid way.
और हमने सभी ने हमारे पारिवारिक जीवन को बहुत ही मूर्खतापूर्ण उसका उसकी शुरुआत की है.
But we should not remain there.
लेकिन हमको वही मूर्खता के स्थान पर बने नहीं रहना है.
We should learn what is more important and what is less important.
और हमको सीखना है कौन सी बातें मुख्य मुख्य है और कौन सी बातें इतनी महत्व की नहीं है.
And we should also learn to overlook small matters.
और यहाँ तक हमें छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखना है.
We should also learn to be silent when our partner do some, you know, small things, and so that it doesn't spoil the environment at home.
और हमें जब हमारा सहयोगी जो है कुछ काम करते हैं कुछ बोलते हैं तभी शांत रहना है ताकि हमारा घर घर का वातावरण जो है वो ना बिगड़े.
In Proverbs chapter 19:11,
नीतियोचन 19:11 में
we read like this: A man's discretion makes him slow to anger, and it is his glory to overlook a transgression.
और नीति वचन 19:11 जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है.
So a wise man will not get upset with the small things, and wise woman as well.
और जो महान व्यक्ति है या जो स्त्री है वो बड़े जल्दी से विलंब से क्रोध करते जल्दी वो क्रोधित नहीं होते हैं.
And it is written it is a glory to overlook a transgression.
और वहां वो कहते हैं अपराध को भुलाना एक महिमामय बात है.
On important matters, we should learn to discuss in harmony in family matters.
और पारिवारिक बातों के अंदर बहुत ही जरूरी है कि हम चीजों को बहुत ही एकता के साथ उसकी चर्चा करें.
But we should never, never argue.
और कभी भी हम विवाद न करें.
Because argument will not achieve anything.
और विवादों के द्वारा कुछ भी हम हासिल नहीं कर पाएंगे.
Nothing wrong in having different opinion on the matter.
और इसमें कोई गलत बात नहीं कि अगर तुम हम दोनों के ही या दो व्यक्तियों के अलग अलग दो मत या दो राय होती है.
But we should never, we should respect each other's opinion, and even if you are not agreeing, be silent and don't argue your point.
और यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी राय होंगे एक दूसरे की जिसके साथ आप सहमत नहीं होंगे लेकिन आपको शांत रहना है और उसका आदर करना है दूसरे व्यक्ति की जो जो मत या राय है उसका आदर करना है.
There is a saying that you can win an argument, but you may lose your partner.
और ऐसी एक कहावत है कि आप विवाद करते करते जीत जाएंगे लेकिन आपका सहयोगी जो उसे आप खो देंगे उसे हार जाएंगे.
So those of us who are the tendency to argue, holding on to our own point, should know the truth.
और इस सत्य को याद रखें कि जिन लोगों को अपने विवादों के दौरान जो अपना जो कहना है उसी को पकड़े रखना है उनके लिए सीखना है.
If you argue, suppose we won an argument, but suppose we lost our wife or husband.
और हो सकता है कि विवादों के दौरान हम जीत जाएंगे लेकिन हम हमारे पति या पत्नी को उस विवादों के दौरान खो बैठेंगे या उसमें हार जाएंगे.
So the whole purpose is lost.
तो उसका पूरा उद्देश्य जो है हम खो बैठेंगे.
Also, it is important that our children learn silently from the conduct of their parents.
और ये भी बहुत मुख्य बात है कि माता पिता का जो चाल चलन है उससे गंभीरता से या शांति रीति से बच्चे उस बातों से सीखते हैं देखते हुए.
Our children will grow up and one day they will have their own families.
और हमारे बच्चे हमको देखते हुए बड़े होते हैं और वो उनका आगे जाकर उनका खुद का एक परिवार होगा.
We should leave good memories and good examples as an inheritance for them to follow in their own marriage.
और एक वारिस के रूप में हमको अच्छी यादें देना है अच्छी सीख देना है ताकि उनके विवाह की विवाहित जीवन के अंदर वो भी इस प्रकार जी सके.
I want to tell an example, a real story.
और एक सच्ची कहानी या घटना को मैं कहना चाहता हूँ.
One day, when quickly hurrying to prepare for going for Sunday meeting, one wife asked her husband to get some eggs for making breakfast.
और एक रविवार को जब बाहर जा रहे थे तभी उसके ब्रेकफास्ट बनाने के टाइम पे तुरंत पत्नी से कहा कि ब्रेकफास्ट वो बनाए अंडे लेकर आए.
So husband went out and brought some eggs.
और उसके बाद जो पति बाहर जाकर अंडे लेकर आता है ब्रेकफास्ट के लिए.
But when he came back with the eggs, he came little carelessly and the bag of eggs fell down inside the house and it all broke.
और यहाँ पे वो जो अंडे लेकर घर पर आया तो उसने ठीक से उसको संभाल कर लेकर नहीं आए और कहीं ना कहीं उसको लगकर वो अंडे टूट गए उस बैग के अंदर ही.
So he said both of them looked at those broken, spoiled eggs and they again looked at their own faces and laughed.
और यहाँ पर पति पत्नी ने एक दूसरे के चेहरे को देखा और फिर उस टूटे हुए अंडों को देखा और दोनों हंसने लगे.
So that husband testified that day after coming to church, this is what happened in the morning.
और वो पति कलीसिया में आने के बाद वो गवाही देता है कि ये सुबह ऐसा हुआ।
They could laugh at the mistakes of others.
हम एक दूसरे की जो गलतियां होती उस पर हम हंस सकते हैं।
Instead of arguing over that.
उस पर विवाद करने की बजाय उस पर हम हंस सकते हैं।
Another question is where our incomes are limited and we have a lot of needs. So in
a situation where our income is limited or our salary is limited, how can we ensure that we meet our needs and not fall into debt?
और चौथा प्रश्न ये है कि अगर हमारा सैलरी या हमारा वेतन जो है बहुत ही सीमित है और कई सारी जरूरतें हैं और इन परिस्थितियों में से हम कैसे निपटे और कैसे हम सुनिश्चित करें कि हम कर्ज से मुक्त रह सके या बिना कर्ज के जीवन को बिता सके।
Yeah, this is a very good and very genuine practical question.
और बहुत ही अच्छा और बहुत ही व्यवहारिक ये प्रश्न है।
What I want to say is, God in His sovereignty has given us a circle around us.
और परमेश्वर अपनी प्रभु सत्ता के अंदर उसके सामर्थ्य वो जो है उसके अंदर एक गोले को या सर्कल को हमारे चारों ओर रखकर हमको उसके बीच में रखा है।
A circle of financial capacity.
और एक सीमा जो है आर्थिक परिस्थितियां या आर्थिक हमारी जो कैपेसिटी होती है उस सर्कल के अंदर उस सीमाओं के अंदर परमेश्वर ने हमको रखा है।
And this is for a time.
और ये एक समय के लिए है।
That circle size can vary after some time, change after some time.
और परमेश्वर ने आर्थिक जो बातों का एक सर्कल हमारे चारों तरफ बनाया है वो हो सकता है कि कई समय के साथ बढ़ सकता है या बदल सकता है।
But I believe one of the first thing we should remember is we should be genuinely grateful for our little circle.
लेकिन मैं एक विश्वास ये करता हूँ कि हमें बहुत ही गंभीरता से जिस सीमाओं के साथ परमेश्वर ने हमको आर्थिक परिस्थिति में रखा है उसके लिए हमें धन्यवादी बने रहना है।
Whatever God has given at this point of time in our family, we should be extremely grateful.
और इस समय में परमेश्वर ने हमारे परिवार के लिए जो कुछ भी दिया है, जो भी वेतन या जो भी आर्थिक बातें दी है, उसके लिए हमें बहुत ही धन्यवाद परमेश्वर को देना है।
The reason is there are many others who don't have even this.
कारण यह है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं जो हमारे पास है।
We can see in known people in our own circles, people who are at less privileged than us.
और कई बार हमारे रिश्तेदारों में या लोगों में हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग इतने सौभाग्यवान नहीं हो पाते जितने कि हम हैं।
So that's a good reason to be grateful for what we have.
और जो कुछ हमारे पास में इस कारण से हमको उसके लिए धन्यवाद देने का एक अच्छा कारण ये है।
And a second thing is we should also learn to be content with what they have put in our hand now.
और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी हमारे हाथों में रखा है उसके साथ हमें संतुष्ट रहना है।
So I always think this. It will be very difficult for God to bless somebody who are neither grateful nor content with their current situation.
और मैं इस बारे में सोचता हूँ कि परमेश्वर को बहुत ही कठिन होगा उस व्यक्ति को आशीष देना जो अपने परिस्थिति से संतुष्ट भी नहीं है और धन्यवादी भी नहीं है।
Instead, if there is grumbling and
लेकिन उसके उसके अलावा उसके अंदर जो है वो कुड़कुड़ाना है या शिकायत करना है।
An absence of gratitude.
और धन्यवाद के बदले वो ये कुड़कुड़ाता है।
That is a very miserable life.
और ये बहुत ही दयनीय बात होगी।
There are two verses which in our family life in matter of finances God really helped over these many many years.
और इन पिछले सालों के अंदर परमेश्वर ने दो वचन के द्वारा परिवार के रूप में और एक खासकर आर्थिक बातों के बारे में परमेश्वर ने बहुत ही उससे मुझे सहायता दी है।
I want to read that one. First verse is 1 Timothy chapter it is 6 to 8.
पहला तिमोथियो
chapter 6 verses 6 to 8.
छठा अध्याय 6 से 8 वचन।
Yeah, you can read that in Hindi, Kiran.
पहला तिमोथियुस 6 अध्याय 6 से 8। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं, पर यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए।
So this I cannot explain in words. I cannot. It was such an unspeakable blessing in my life.
और मेरे जीवन के अंदर मैं इसको वर्णन नहीं कर सकता शब्दों के अंदर, लेकिन इस वचन से मुझे इतनी आशीष मिली है।
These words were so living in my life.
और ये वचन जो है मेरे जीवन में इतने जीवित रहे हैं।
First thing is godliness with contentment is great gain.
और वहाँ कहते हैं कि संतोष सहित भक्ति जो है बड़ी कमाई है।
So godliness become a great gain only when it is coupled with contentment.
और भक्ति जो है कब वो बड़ी कमाई बन सकती है, जब वो एक संतोष के साथ जोड़ी जाती है।
In other way, the value of godliness is magnified when it is accompanied by contentment.
और दूसरे शब्दों में अगर कहे कि एक भक्तिमय जीवन को तब बढ़ा दिया जाता है या वो बहुत बड़ा हो जाता है जब वो एक संतुष्टि के साथ जोड़ दिया जाता है।
And it also says, when we have food and covering with this, we shall be content.
और वहाँ वचन में कहते हैं कि यदि हमारे पास खाने और पहनने को है, तो इस पर हमें संतोष करना चाहिए।
So when we married also many years, 32 years, 32 years before, we started with a minimum family income.
और 32 साल पहले जब हमने हमारे शादी की शुरुआत की तो हमने बहुत ही छोटी आवक जो हमारी जो वेतन जो था सैलरी उससे हमने शुरुआत की।
Just enough to each month, just enough. We had to be very careful in spending.
और बहुत हमारे पूरे महीने के लिए पर्याप्त जितनी जरूरत उतना होता था उतना ही हम उसमें खर्च कर पाते थे।
And our elderly parents were also with us.
क्योंकि हमारे बुजुर्ग माता पिता भी हमारे साथ रहते थे।
But I remember a time when my salary in terms of amount it was not very large.
और मैंने देखा कि मेरा जो सैलरी जो थी वो संख्या के अंदर बहुत बड़ी नहीं थी।
But God had given a spirit of contentment.
लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक संतुष्टि का आत्मा दिया।
So I remember sometimes I used to think I was so happy and grateful for my income.
और मैं सोचता हूँ कि कई बार मैं इतना खुश रहता था, इतना धन्यवादी मैं मेरी सैलरी जो है इनकम के लिए मैं इतना धन्यवाद प्रभु को देता।
Sometimes I would think that I am the highest paid person in Mumbai.
और मुझे कई बार ऐसा लगता था कि मुंबई में सबसे अधिक कमाने वाला व्यक्ति, सबसे ज्यादा वेतन रखने वाला व्यक्ति मैं हूँ, इस प्रकार मैं धन्यवाद देता था।
My salary was so small that I am ashamed to tell it now.
और मुझे बड़ा शर्म भी आ रहा है, लेकिन उस समय मेरी जो सैलरी जो थी बहुत कम थी।
But with that amount also, God had given such a level of contentment, and I could feel I am very highly paid.
और उसके साथ भी जब वो सैलरी छोटी थी तब परमेश्वर के प्रति इतना संतुष्टि मेरे प्रति थी जैसे मुझे लगता था कि मेरा सैलरी बहुत बड़ा है।
So from there, my own experience, I can say that it is not the amount or wealth which make us content.
और मैं अपने अनुभव से आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो जो हमको आवक मिलती है, पैसा है या वो संख्या है, उससे हमको संतुष्टि नहीं मिलती है।
It is when we recognize and value what God has given us at a particular time, it is that which make us content.
और एक खास समय के ऊपर हम जब इसको जान जाते कि परमेश्वर ने हमें उस आवक को दिया हमारी जरूरत के लिए, तब उसको धन्यवाद देकर हम संतुष्ट हमारे जीवन में बनते हैं।
A second verse which used to help me those years is Hebrews chapter 13 verse 5.
Ibraniyon 13:5.
Make sure that your character is free from the love of money, being contented with such things that you have. Because
Ibraniyon 13:5 में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो।
And it says that your character should be free from the love of money.
और यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारा चरित्र जो है वो पैसे के लोभ के बिना होना चाहिए।
And we should also learn to be content with such a thing God has entrusted to us at a particular point of time.
और एक खास समय पर परमेश्वर ने जो भी चीजें हमें सौंपी है या दी है उसके साथ हमें संतुष्ट रहना है।
The reason is also given here.
और कारण भी उसका वहाँ लिखा हुआ है।
God has said, I will never leave you nor forsake you.
क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा।
So in that background, verse 6 says that, therefore I confidently say, the Lord is my helper.
और छह वचन में कहता है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है.
Yeah, another thing which the Lord taught me earlier in my Christian life is,
और मेरे मसीह जीवन के शुरुआती दिनों में और एक चीज जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई वो ये है,
I should not compare myself with others.
पर मुझे अपनी तुलना किसी और के साथ नहीं करनी है.
There may be other richer brothers and sisters in the church.
और कलीसिया में हो सकता है कि मुझसे भी ज्यादा धनवान भाई और बहन हो सकते हैं.
Over or even among my colleagues or neighbors.
और यहाँ तक मेरे पड़ोसी में या मेरे जो सहयोगी जिनके साथ में काम करता हूँ.
So I should never compare my situation with them.
और तब मुझे मेरी परिस्थितियों को किसी और की परिस्थितियों के साथ उसकी तुलना नहीं करनी है.
That is foolishness.
और ये मूर्खता है.
Actually, Bible say comparing oneself with others is foolishness.
और बाइबल ये कहता है कि जो एक दूसरे के साथ जब हम अपनी तुलना करते हैं वो मूर्खता है.
Another thing is we should never try to display a larger than our real financial capacity to others.
और दूसरी चीज ये है कि कभी भी हमारा जो आर्थिक हालात जो है उससे बढ़कर हमको दिखाने के प्रयत्न या कोशिश नहीं करनी चाहिए कि उससे बढ़कर मैं हूँ.
We all may have that temptation inside us to show something what we are not really.
और हमारे अंदर भी एक परीक्षण हो सकता है कि जो हमारे पास नहीं है, जो हम नहीं हैं, उससे बढ़कर दिखाने का एक परीक्षण हमारे अंदर हो सकता है.
We will be tempted to show off something which we are not.
और जो हम नहीं है उसको दर्शाने का या शो या खाली खोखला दिखावा करने का एक परीक्षण हमारे अंदर आ सकता है.
How we do this sometimes?
और हम किस प्रकार इसे करते हैं?
Sometimes we will do this by buying and possessing expensive things which actually we cannot afford.
और कई बार हम इसे इस प्रकार कहते हैं कि ऐसी चीजों को खरीदते हैं जिनको हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको हम लोग नहीं खरीद पाते, लेकिन फिर भी उसे हम खरीदते हैं.
Because the secret desire that inside is there to show off to others.
हमारे अंदर एक छिपी हुई इच्छा होती है ताकि हम लोगों को दिखा सके कुछ.
I think this is outright ungodliness.
और ये पूरी तरह से ये परमेश्वर की भक्तिमय बातें नहीं है.
One reason why we are not progressing spiritually also because of this reason.
और एक कारण है कि हम आत्मिक रीति में बढ़ नहीं रहे, उसका कारण ये एक है.
We want to show off to others what is not real.
और जो वास्तविक बातें नहीं है, सही नहीं, उन बातों को हम दिखावा करके लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं.
Another thing is there should be honesty and transparency within the family.
और दूसरी बात ये हमारे परिवार के अंदर एक ईमानदारी और पारदर्शिता होनी जरूरी है.
We should brother should discuss with the wife and children if children are of understanding age about family income.
और पारिवारिक जो वेतन है उसके बारे में पति पत्नी को एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए. अगर बच्चे बड़े हैं, समझ पाते हैं, तो उनको भी हम बता सकते हैं.
So that along with the wife and children, collectively we can plan family budget.
और यहाँ पति जो है पत्नी के साथ बांट के या एक बच्चे को साथ में लेकर, वो समझदार है, साथ में मिलके एक परिवार का बजट हम निर्णय उसको निर्धारित कर सकते हैं.
So that full family is aware our limitations. And what are the needs? So everybody will cooperate in that situation.
और ताकि पूरे परिवार के सदस्यों को पता चले कि हमारी सीमाएं क्या है और उन जरूरतों के स्थान पर वो एक दूसरे का सहयोग कर सके.
One simplest way is to after making the major payments like the electricity bill etc. monthly payments, remaining money you can divide by 4.
और बहुत ही सादा ये एक तरीका है. जब आप बहुत ही जो मुख्य जो पेमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो सारी जो कर दे, तो जो बचा हुआ पैसा उनको 4 भागों में आप बांट सकते हैं.
That means for the 4 weeks of each month we know approximately how much money we can spend.
और जैसे कि 4 सप्ताह महीने के होते हैं, उसके अंदर हम किस तरह से उन पैसों को बांट सकते हैं और कैसे खर्च कर सकते हैं 4 सप्ताह में 4 भाग में.
It is also a good idea to buy household things like food grains, etc., right in the beginning of the month, so that there is enough food at home.
और महीने की शुरुआत के अंदर ही अनाज जो किराना जो है वो खरीदना अच्छी बात है ताकि पूरे महीने दौरान घर के अंदर अनाज रहे उपलब्ध
so that and sometimes it may be even cheaper to do so.
और कई बार ये सस्ता भी होता है ऐसे करने से.
I think this money matters is a very important thing which we should through our conduct even our children gradually learn.
और ये पैसों का जो बातें हैं जो बहुत ही मुख्य बात है क्योंकि धीरे धीरे करते हुए हमारे बच्चे भी जो हमारे व्यवहारों से सीखते हैं
Because there is a close connection with the money and spiritual life.
क्योंकि पैसा और हमारे आत्मिक जीवन के बीच में बहुत ही एक नजदीकी का संबंध है
By all means we should avoid debts.
और हर रीति से हमें हर प्रयास करना है कि हम कर्ज में ना आए
Except for things like buying a house, etc.
और या बजाय कि हम जब घर खरीद रहे तभी हम कर्जे को ले सकते हैं.
So I want to encourage something. This financial tightness may be for a period.
और जैसे मैंने बताया कि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जो सीमाएं जो आर्थिक बात या पैसों के बारे में जो है वो बहुत ही अस्थाई रूप में या टेम्पररी है.
God can change it.
और परमेश्वर उसको बदल सकता है
बट नाउ वी शुड लर्न टेक इट एज अ ट्रेनिंग पीरियड
लेकिन अभी परमेश्वर उस समय को हमको एक ट्रेनिंग का समय इस प्रकार लेना है
दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर आवर लेटर लाइफ
और आने वाले जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा
आई वांट टू रीड वन वर्स फ्रॉम फिलिपींस चैप्टर 4
और फिलिपियो 4 से एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ फिलिपियो उसका 4 अध्याय
12 एंड 13
12 और 13 वचन वहां लिखा है मैं दीन होना भी जानता हूँ बढ़ना भी जानता हूँ हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ
या सो पॉल इज टेलिंग दैट आई नो हाउ टू गेट अलोंग विद हंबल मींस एंड आई नो हाउ टू लिव इन प्रॉस्पेरिटी
और पॉलुस यहाँ पे कहता है मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ
in any and every circumstances I have learned the secret of being filled or going hungry
और यहाँ पे कहता है किसी भी हर दिशा हर बातों के अंदर उसने सीख लिया है कि किस प्रकार उन हालातों से गुजर सके कैसे वो भूखा भी रहना उसने सीखा है
so it is written it is a secret
और यहाँ पे लिखा ये तो रहस्य की बात है
which we can learn
और जो हम सीख सकते हैं
that contentment is a secret which we can learn
और ये संतुष्टि की जो बात है वो एक रहस्य की बात है जो हम सीख सकते हैं
so learning to adjust to our current situation is a secret which we can learn
और हमारी जो वर्तमान हालात है उसके अंदर उस सीमाओं के अंदर अपने आप को एडजस्ट करना सीखना ये एक रहस्य की बात है जो हमें सीखनी है
and that learning will be very helpful in future
और ये सीख जो अगर यदि हम सीख जाएंगे तो भविष्य में इससे बहुत मदद मिलेगी
and it concludes that I can do all things through Christ Jesus who strengthens me
और वहां पे अंत करता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं
so it's a wonderful thing Paul has said that in the context of constraints limitations
और यहां पर पौलुस ने इस वचन को यहां पर कहा है कि जो सीमाएं हैं या कमी घटी है उन हालातों के अंदर पौलुस इस वचन को कहता है
I can do all things through Christ Jesus who strengthens me.
और जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ.
Okay, this is the last question. I want to combine two questions. One is there might be lack of. So there might be lack of interest or boredom in a marriage life. Or how to develop friendship and fellowship within the with the partners? How to develop and how to increase friendship with the partners?
और पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हुए कई बार कई बोर हो जाते हैं कैसे एक वैवाहिक संबंध के अंदर एक मित्रता को हम बढ़ा सकते हैं कैसे विकसित कर सकते हैं एक संगति को कैसे बना सकते हैं
Normally, till the first child is born in a newly married couple, there is no boredom.
और खास करके जब जब पति पत्नी को पहला बच्चा नहीं होता है तब तक जब जो समय रहता है तब तक कोई बोरिंग नहीं होता है समय.
So that is a period, first year of marriage is a period when they learn from each other.
और एक एक पहला साल जो होता है वो पति पत्नी एक दूसरे से सीखते हैं.
And mostly they enjoy their company with each other.
और खास करके एक दूसरे के साथ जो कंपनी जो है एक दूसरे के साथ वो उसका आनंद उठाते हैं.
But sometimes when a child is born,
और कई बार ऐसा होता है कि जब एक बच्चे का जन्म परिवार में होता है,
there is a chance that a disproportionate attention goes to the child.
और ऐसे बहुत चांसेस होते हैं कि जहां एक जो ध्यान का ध्यान देने वाला जो एक भाग जो होता है वो बच्चे की तरफ ज्यादा चले जाता है.
The husband or wife can be so possessive about the newborn child.
और पति पत्नी बहुत ही पजेसिव हो जाते हैं वो उस बच्चे के बारे में जो एक नया जन्म पाया हुआ नया एक बच्चा उनके परिवार में जब आता है.
And they can tend to forget each other.
और हो सकता है कि वो एक दूसरे को भूल जाए उस कारण.
So that is not a healthy situation.
और ये अच्छी बात नहीं है.
It can undermine the healthy relationship between husband and wife.
और हमें पति पत्नी के बीच में जो अच्छा संबंध होता है उसका मूल्य करना है.
How we overcome that situation?
और इस हाल इस परिस्थिति पर हम कैसे जय प्राप्त कर सकते हैं?
We can ask God for wisdom.
हम परमेश्वर से बुद्धि को मांग सकते हैं.
We should look after the baby, nourish the child, no doubt about that.
और उसमें कोई संदेह नहीं कि हमें बच्चों का ठीक से ख्याल रखना चाहिए.
But we should not forget that on the good relationship between husband and wife is the family is built.
और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पति पत्नी के बीच में जब अच्छा संबंध बना रहता है तभी एक परिवार जो है वो बनता है या उसका निर्माण हो पाता है.
So on the good relationship of husband and wife, on that foundation children are added.
और वहां पर पति पत्नी के बीच का जो अच्छा संबंध होता है वो एक नींव के तौर पर उसी के ऊपर बच्चे जुड़ जाते हैं.
God has never intended that children takes the place of husband and wife relationship.
और परमेश्वर की कभी भी इच्छा नहीं थी कि संबंधों में बच्चे आकर पति पत्नी के बीच में आकर उस स्थान को ले ले.
We have to wisely differentiate that.
और हमें बहुत ही बुद्धिमानी के साथ इसके बीच में अंतर करना है.
When husband wife relationship is strong, cordial and good,
और पति पत्नी का जो संबंध है बहुत ही मजबूत है बहुत ही एकता के साथ या बहुत ही अच्छा वो है.
It is easier to bring up children on that foundation.
और ये बहुत ही आसान हो जाता है कि उस नींव अच्छी नींव के ऊपर बच्चों को बढ़ाना.
So there is a need for a good balance.
और यहाँ पर एक अच्छे संतुलन की बहुत जरूरत है.
While we attend to our children, we should not miss each other.
और जब हमारे बच्चों को हम बड़ा करते हैं तभी पति पत्नी को एक दूसरे को नजरअंदाज नहीं करना है.
If you neglect relationship between husband and wife, that can bring unnecessary stress in marriage.
और हो सकता है कि पति पत्नी एक दूसरे को जब अवॉइड या निग्लेक्ट करते हैं तो एक बिना आवश्यकता का जो एक स्ट्रेस है या दबाव पति पत्नी उस विवाह के अंदर टेंशन को महसूस कर सकते हैं.
So even when children are young and they need much of our attention, we should find ways and means of intimate quality time between husband and wife.
और यहाँ तक कि बच्चे छोटे होते हैं और जैसे बढ़ते उन्हें बहुत ही समय की और ध्यान की जरूरत होती है लेकिन उसके साथ साथ पति पत्नी को बहुत ही एक नजदीकी संबंध और एक बहुत ही क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ खोजना है एक दूसरे के साथ.
To be an eagerness to be together with husband and wife.
और ताकि एक दूसरे के साथ रहने की एक इच्छा दोनों के साथ दोनों पति पत्नी के बीच में होनी चाहिए.
I think the sexual relationship within marriage plays an important role.
और एक सेक्सुअल रिलेशनशिप जो विवाह के अंदर होता है बहुत ही मुख्य भाग उसके अंदर उसका होता है.
Bible says that in Hebrews chapter 13 verse 4.
इब्रानियों 13:4 के अंदर इस प्रकार बाइबल में लिखा है.
marriage is to be held in honor among all, and the marriage bed is undefiled.
और विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह का बिछोना निष्कलंक रहे.
And that physical relationship plays an important role in family life.
और परिवार के अंदर एक पति पत्नी के बीच में जो शारीरिक संबंध जो होता है बहुत ही मुख्य वो भाग उसमें वो रहता है उसका.
And as a matter of fact, men are more driven in sexual interest.
और ये बात सत्य है कि जो पुरुष जो होते हैं वो स्त्रियों से बढ़कर उनके अंदर ये परिवार जो विवाह का ये संबंध जो होता है उसके लिए बहुत ही ज्यादा वो उत्सुक होते हैं.
That is how God has made men.
और इस प्रकार से इसी तीव्र इच्छा के साथ पुरुषों को बनाया गया.
As compared to a woman, there may be more intense sexual desires in a man.
और एक पुरुष के अंदर स्त्री की तुलना में एक सेक्स के डिजायर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है.
So a wife, husband and wife will understand that.
और एक बुद्धिमान पति पत्नी है इसको वो समझेंगे.
And will not miss such intimate time.
और वो कभी भी इस प्रकार का जो नजदीकी का संबंध जो एक दूसरे के साथ में उसको कभी खोएंगे नहीं.
And that is also a right in right for each other.
और ये एक दूसरे का विवाह के अंदर हक भी है.
We should not deprive one another in that.
और हमें इस भाग के अंदर पति पत्नी को एक दूसरे को इस क्षेत्र के अंदर वंचित नहीं करना है.
We can in simple term it can be compared like eating food.
और हो सकता है कि साथ में खाना.
So sexual needs and desires are also like that very legitimate.
और हो सकता है कि इसकी तुलना जो हम लोग खाना खाते हैं उस भोजन के साथ हो सकता है और बहुत ही ये इस प्रकार की एक जरूरत हो सकती है हमारे शरीर के लिए.
So that understanding help in understanding each other.
और ये समझ जो है हमें एक दूसरे को समझने में मदद करती है.
So between the husband and wife we should have that freedom. If one is hungry, he or she will ask for food in the same way.
और जैसे पति पत्नी के अंदर ये समझ होनी बहुत जरूरी है या पति यदि कोई भूखा है तो हम लोग स्वाभाविक रीति से हम उसको समझते हैं और उसको उस खाने को मांगते हैं.
So in the same way in physical relationship also one should not hesitate in expressing the desire and the other side should not hesitate in making that available.
और उसी प्रकार से हमारे शारीरिक जो संबंध है उसके संबंध में भी किसी भी व्यक्ति को पति पत्नी को उसको व्यक्त करने में उसको दर्शाने में उसमें पीछे नहीं हटना है या फिर जिसको उसको संतुष्ट करने में भी किसी उसमें पीछे नहीं हटना है.
About developing the friendship and fellowship between husband and wife.
और यहाँ पे पति पत्नी के बीच में संगति के बारे में जो प्रश्न पूछा गया कि उसको कैसे हम विकसित कर सकते हैं.
Both the husband and wife should take the initiative.
और पति पत्नी जो है वो पहले एक एक इनिशिएटिव पहले वो चुनाव कर सकते हैं या उसको वो उसकी शुरुआत कर सकते हैं.
We should value each other.
हमें एक दूसरे का मूल्य करना है.
We can try to understand our partner's spiritual convictions.
और हमारे जो पार्टनर जो है उनके आत्मिक जो कन्विक्शन है या बोध जो है उनको हमें जानने की कोशिश करना है.
So we can spend time together in prayer and discussing spiritual matters.
और हमें प्रार्थना में और इन सारी बातों की चर्चा करने में जो आत्मिक बात है उसके अंदर समय बिताना है.
And personally I can share my own testimony. There was in earlier in my family life.
और मैं अपनी व्यक्तिगत गवाही देना चाहता हूँ कि मेरे शुरुआती मेरे पारिवारिक जीवन के अंदर
I thought spiritual fellowship is possible only with the brothers in the church.
और मैं इस प्रकार सोचता था कि जो आत्मिक संगति जो है वो भाइयों की एक दूसरे भाई के साथ ही हो सकती है.
I learned much later that I can have spiritual fellowship like I have with any other brother in the church with my own wife.
और फिर बाद में मैंने इस बात को जाना कि जैसे मैं एक आत्मिक संगति कलीसिया के किसी भाई के साथ रख सकता हूँ, वैसे ही मैं घर पर अपनी पत्नी के साथ भी वही संगति को मैं कर सकता हूँ।
So over the period of years, God helped us to have a close spiritual fellowship.
और इन सालों दौरान परमेश्वर ने मेरी सहायता की आत्मिक संगति मेरी पत्नी के साथ में रख सकूं।
And that developing being a friendship with the wife also was a progressive thing in our life.
और हमारे जीवन के अंदर एक मित्रता कैसे पति पत्नी और पति के बीच में हम ला सकते हैं, वो भी धीरे धीरे करके होता है।
And I believe it is possible we can tell about our wife that she is my best friend.
और ये संभव बात है कि हम अपनी पत्नी के बारे में इस प्रकार कह सकते हैं कि वो मेरी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है।
I think God can help all of us to take that progressively.
और परमेश्वर हमारी मदद कर सकता है ताकि हम धीरे धीरे उसको हम आगे बढ़ा सके।
That should be our aim. My wife should be my best friend.
और ये हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए कि मेरी पत्नी जो है मेरी बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए।
So what is the sign of a good, cordial, healthy wife-husband relationship?
और कौन सा ऐसा चिन्ह है जो पति पत्नी के अंदर बहुत ही अच्छा संबंध है, बहुत ही एकता के साथ है?
I thought in earlier years it is the ritual of sitting together in prayer in family.
पहले मैं इस प्रकार सोचता था कि पति पत्नी साथ में एक रीति रिवाज के अनुसार साथ में प्रार्थना में बैठे, तो उससे ये दर्शाता है कि बहुत अच्छे संबंध में आत्मिक बातों में वो है।
But that is not a sign of a good relationship.
लेकिन ये एक अच्छे रिश्ते का चिन्ह नहीं है।
Because I think if relationship the wife is not good also many family husband and wife may sit together and pray.
और यहाँ तक कि पत्नी और पत्नी के बीच में संबंध अच्छा नहीं होता, लेकिन बहुत से ऐसे परिवार फिर भी शाम को साथ में बैठ के वो प्रार्थना करते हैं।
I think one practical sign is whether we are able to make fun of each other or we can have some innocent jokes.
और इसका बहुत ही व्यवहारिक चिन्ह यह है पति पत्नी के बीच के संबंध को जानना है तो क्या वो एक दूसरे के साथ एक अच्छा मजाक एक दूसरे के ऊपर हंस सकते हैं या अच्छा सा मजाक कर सकते हैं वो एक दूसरे के साथ।
If we are able to pull each other's legs without the fear that I may offend, then that is a sign of good relationship.
और अच्छे संबंध का क्या चिन्ह है कि अगर एक दूसरे के पैर हम टांग खींच सकते हैं उसको बिना इसको ऑफेंड करे या उसको बुरा लगे तो ये अच्छी बात है।
So developing friendship and fellowship with our wife and husband is a progress. It may not happen overnight.
और अपनी पत्नी के साथ जो एक मित्रता एक संगति को बढ़ाना ये एक प्रक्रिया है, ये धीरे धीरे करके होता है, एक रात में ये नहीं हो जाएगा।
We have to progressively work towards it.
और हमें धीरे धीरे करते इस क्षेत्र के अंदर काम करना है।